हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 37। इन अत्यंत ही उत्तम शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन आज पुनः भगवान से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलतमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। आयति श्रद्धयोपेता योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। आयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। आयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। आयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। शब्दों का अर्थ अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन ने कहा। अयति ही अर्थात असफल योगी। श्रद्धया श्रद्धा से उपेत लगा हुआ या संलग्न योगात योग से चलती मानस विचलित होता है मन से अप्राप्य प्राप्त ना करके योग संसिद्धि योग की सर्वोच्च सिद्धि को काम गतिम कृष्ण गच्छति। काम मतलब किस गतिम मैंने लक्ष्य को कृष्ण हे कृष्ण गच्छति अर्थात प्राप्त करता है। अनुवाद अर्जुन ने कहा हे कृष्ण उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण इससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम है कि जीव आत्मा यह भौतिक शरीर नहीं है अपितु इससे भिन्न है और इसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई इस श्रृंखला को जोड़ सकें और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकें। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़ा से भी प्रयास से मोक्ष की महत्ति आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने की को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग में को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यता बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना है। जैसे फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यह योगा चलति मानसा अर्थात दिव्य पथ से विचलित कहलाता है। अर्जुन आध्यात्म आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। श्री प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृष्ण से ये प्रार्थना करेंगे कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो जो कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवश्च श्रीरूपं साक्रे जातम सह गण रघुनाथ वितं तं सजीवं सत्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सह गण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनं गारांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता माता की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं। तो आज अर्जुन भगवान से पुनः एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं अयति ही, अयति ही का मतलब होता है असफल योगी, क्योंकि भगवान ने इससे पहले दो श्लोकों में योग को किस तरह से मतलब अर्जुन ने पहले जब प्रश्न किया था कि मेरे हिसाब से तो मन बहुत चंचल है, तो फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो भगवान ने उसको कंट्रोल करने के विषय में बताया असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मैं मानता हूँ अर्जुन, मन को निग्रह करना अत्यंत ही दुष्कर है, परंतु मुश्किल है, असंभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, अर्थात दिस इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होगा? तो अर्जुन को भगवान ने कहा अभ्यास है ना, तो कौंतेय वैराग्येण च क्रियते, आपको अभ्यास करना पड़ेगा और साथ साथ में वैराग्य ग्रहण करना पड़ेगा, तो आप मन को विचलित होने से रोक सकते हो। लेकिन साथ साथ में भगवान ने एक आगे भी बात बताई कि देखो अर्जुन, अगर मन को कंट्रोल नहीं किया गया, भगवान कहते हैं असौ यतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, मेरा ये मत है कि अगर मन को कंट्रोल नहीं किया गया तो आत्म साक्षात्कार बहुत कठिन हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार का मतलब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, आत्म साक्षात्कार मूलभूत नियम क्या है कि जीव आत्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। आत्मा को इस भौतिक जगत के किसी भी अशाश्वत वस्तु से आनंद प्राप्त नहीं होगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये तुम्हें तब तक आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा जब तक कि तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर लेते हो। असंयमतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, तो फिर भगवान ने आगे कहता कहा वशयात्मना तु यततो शक्यो वाप्तुम उपायतः। इसलिए उस मन को वश में करने का आपको अभ्यास करना है, यत्न करना है और उपाय भी खोजना है कि मैं कैसे अपने मन को ना कंट्रोल करूं, भक्ति की विधि को किस तरह से अपनाऊं। लेकिन आज भगवान से अर्जुन इसी विषय में पूछ रहे हैं। भगवान कहते हैं अयति ही श्रद्धयोपेता, वो असफल हो जाता है परंतु साथ साथ में उसने श्रद्धा से उसको करने का प्रयास भी किया है। ऐसा नहीं है कि वो प्रयास नहीं कर रहा है। श्रद्धयोपेता यानी श्रद्धा से उस योग को करने का प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी असफल हो जाता है। योगा चलति मानसा, कि योग में वो अपने मन को दृढ़ नहीं कर पाता है, उसका मन विचलित हो जाता है। तो फिर अप्राप्य योग संसिद्धि, फिर तो वो योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अगर योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं किया उसने तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, काम गतिम उसकी गति क्या होगी, उसका लक्ष्य क्या होगा, उसे क्या प्राप्त होगा। क्योंकि वैदिक शास्त्रों में दो मार्ग बताए हैं, एक तो कर्म कांड का मार्ग है जिसमें आपको कर्म करना है और वो कर्म कांड के मार्ग से सिद्धि बहुत, वो रास्ता धीमा है लेकिन उससे सिद्धि में क्या मिलेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा। और दूसरा आध्यात्मिक मार्ग होता है जिसमें ज्ञान योग आता है, भक्ति योग आता है और ये अष्टांग ध्यान योग आता है। अब जो आध्यात्मिक में जो भी मार्ग में आप जाते हो वो फास्ट है लेकिन सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा व्यवहारिक क्या है, भक्ति योग। लेकिन उस आध्यात्मिक मार्ग से यदि हम किसी भी मार्ग पे चल रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, मोक्ष। तो अर्जुन ये पूछ रहा है कि कर्म मार्ग तो सकाम कर्म का मार्ग तो उसने छोड़ दिया, मतलब अब उसे स्वर्ग तो मिलने वाला नहीं है, और भक्ति योग में यानी आध्यात्मिक योग में कुछ भी स्टार्ट किया है, भले उसने ध्यान योग स्टार्ट किया है, ज्ञान योग स्टार्ट किया है या भक्ति मार्ग स्टार्ट किया है, अगर वो इसमें सफल नहीं होता है तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, आप मुझे बताओ उसका क्या अंजाम होगा, वो क्या गति प्राप्त करेगा और वो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा तो क्योंकि उसका मन विचलित हो गया है तो फिर उसका क्या होगा। सो दिस इज $100 million क्वेश्चन asked by Krishna, Arjuna to Lord Krishna. अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, और अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया कैसे, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे तो भगवान ने अर्जुन को बहुत ही सुंदर बात बताई है। पहले जब अर्जुन ने क्वेश्चन किया 34 में, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवत्तरम तस्य हम निग्रह मन्ये वायु रिवसु दुष्कर। लेकिन इससे पहले भगवान ने जो बात कही है वो जरा अर्जुन को बहुत ऐसा लगा कि ये मेरे लिए व्यावहारिक नहीं है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने थोड़े पहले अगर हम देखेंगे श्लोक नंबर 30 में भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें योगी बनना है और वास्तविक योगी के बारे में बताया अर्जुन को कि कौन सा होता है। भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यानी कि वास्तविक योगी क्या होता है, जो मुझे हर जगह हर स्थान में देखता है। और आगे भगवान ने उससे भी बढ़कर क्या कहा सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितम योमाम, जो हर किसी के हृदय में मुझे स्थापित देखता है, भजत एकत्वमास्थिता, और मुझे और हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा को एक ही समझता है। तो सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते, सभी प्रकार से वो उपस्थित होता है मेरी सेवा के लिए। सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो इतना सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न आया, क्योंकि अर्जुन को अगर हम भगवद गीता में देखते हैं, स्टार्ट से लेकर अंत तक भगवान युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपको युद्ध करना आपका कर्तव्य है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि देखो कृष्ण, मुझे बताओ कि तुम कहते हो सर्वम च मई पश्यति योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखता है, हर किसी को मुझ में देखता है। तुम कहते हो कृष्ण हर जगह तुम्हें देखूं, हर किसी में तुमको देखूं, तो उससे भी बढ़कर आप ये कहते हो कि 32 में भगवान ने कहा था आत्मोपम येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, कि तुम सबको अपने समान मानो, अब उनके दुख और सुख को अपने दुख और सुख के समान समझो। स योगी परमो मत, वही योगी मेरे मत में सबसे ज्यादा उत्तम है। तो तुम ये कैसे मुझे बोल, अर्जुन पूछ रहा है कि मैं कैसे करूं ऐसा, तुम मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हो, मेरा स्वाभाविक कर्म है युद्ध करना, और युद्ध मुझे करना है कर्ण से, दुर्योधन से, मैं उनमें आपको कैसे देख सकता हूँ। मानो यदि मैं उनके अंदर आपको देख भी लूं तो भी मुझे तो उनको मारना है। अगर आपको हर जगह देखूं तो युद्ध करूंगा कैसे, क्योंकि सामने तो हर जगह आप मुझे दिखोगे, मैं आपके साथ युद्ध कैसे करूंगा। पहले आप बोलते हो युद्ध करो, और युद्ध में तो सबकी हत्या करनी पड़ेगी, तो ये जो आप बता रहे हो मुझे, वो मुझे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। और श्लोक नंबर 33 में अर्जुन ने बोल दिया योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्थितं स्थराम स्थराम। अर्जुन ने कहा मधुसूदन, आप जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन कर रहे हो, यो यम योगस्त्वया प्रोक्त, जो आप बता रहे हो साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि, वह मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं रखता है, वह मुझे असहनीय लगता है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, बहुत ज्यादा मन स्थिर नहीं रहता है। तो फिर ये बात मेरे मन में आएगी नहीं कि इन सब के अंदर मुझे आपको देखना है और फिर उनके लिए उनसे युद्ध करना है। तो आगे भी अर्जुन बोलते हैं खाली चंचल थोड़े मन, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमार्थी बलवत्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु रिवसु दुष्करम। जिस प्रकार वायु को रोकना बहुत कठिन है, उसी तरह से मन को, क्योंकि मन बहुत चंचल है, प्रमार्थी है, विचलित करने वाला है, बलवा है, बहुत ज्यादा बलवान है, और दृढ़ है, हठीला है, दुराग्रही है, बात मानता नहीं, और उसको वश में करना तो वायु को वश में करे, वायु रिव सुदुष्कर, वायु से भी ज्यादा उसको वश में करना कठिन है। उसके बाद अर्जुन को भगवान ने कहा हाँ मैं मानता हूँ अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनोधुर निग्रहम चलम अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न सिखी रहती, मैं मानता हूँ मुश्किल है परंतु असंभव नहीं है, इसको किया जा सकता है यदि अभ्यास और वैराग्य से इसको सीरियसली हम मन को वश में करना चाहेंगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद भी भगवान ने कहा श्लोक नंबर 36 में असौ यतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतथा शक्यो वाप्तुम उपायतः, कि आपको उपाय खोजना है। तो अर्जुन आज पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है, जो उपाय आप बोल रहे हो कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो भी है उसको करने का वो प्रयास करता है, श्रवण करने का, कीर्तन करने का, साधु संग करने का वो प्रयास करता है। पर कैसे कर रहा है प्रयास? अयति श्रद्धयोपेता, वो श्रद्धा के साथ मार्ग में लगने का प्रयास करता है, परंतु योगा चलति मानसा, उसका मन फिर भी विचलित हो जाता है। और अप्राप्य योग संसिद्धि, अब तो वो योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसका होगा क्या? यहाँ पर हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि अर्जुन ने ये प्रश्न अपने लिए तो पूछा ही नहीं है, क्योंकि अर्जुन के लिए तो यह उत्तर ही पर्याप्त था कि भगवान ने जो कहा कि यदि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्त इति मे मते, कि आपको मन को वश में अगर नहीं कर पाए तो योग प्राप्त नहीं होगा, आधे आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा, इसलिए क्या करना है? वह्यात्मना तु यतता शक्यो वातुम उपायतः, कि आपको उपाय करना है। तो अर्जुन के अंदर इतना अभ्यास और वैराग्य था कि वो आराम से उसको कर सकता था, और भगवान ने जब बोल दिया कि मन को वश में करना कठिन है परंतु अभ्यास और वैराग्य से पालन करना है, तो दैट्स ऑल, अर्जुन के लिए ये करना संभव था। परंतु अर्जुन ये तो केवल हमारे लिए ही पूछ रहे हैं कि अगर हम जैसे कलयुगी जीव जो इंद्रिय सुख की ओर इतना आकर्षित हैं, अगर वो इस अभ्यास को, इस वैराग्य को नहीं कर पाए तो उसका क्या अंजाम होगा। श्री प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन बहुत लकी है कि भगवान साक्षात्कार उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, परंतु अर्जुन लकी है लेकिन हम लकी नहीं है। लेकिन अर्जुन ने ज्यादातर जितने भी प्रश्न पूछे हैं वो हमें, हम जैसे कलयुग के पतित जीवों को माइंड में रखते हुए पूछे हैं, इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं। अब पहले भी जैसे हमने एक पढ़ा था कि ना, अर्जुन ने पूछा था तीसरे अध्याय में भगवान से कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता। हालांकि भगवत गीता में कई बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्पाप कहकर पुकारा है। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो केवल हमारे लिए अर्जुन पूछ रहे हैं ताकि फ्यूचर में जो भगवत गीता पढ़ेंगे तो वो इस तरह के अपराध करेंगे तो उनका क्या होगा। और भगवान इसका उतना सुंदर उत्तर देंगे, अभी इतना आनंददायक उत्तर है, वो उत्तर तो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद दो और भी प्रश्न है अर्जुन के, क्योंकि इसको फिर हम आगे सस्पेंस में रखते हैं क्या उत्तर देते भगवान। अभी तो हम अर्जुन के इन प्रश्नों का आनंद देंगे। वास्तव में अर्जुन ने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। अर्जुन बता रहे हैं कि जीव स्टार्ट तो कर लेता है भक्ति, परंतु वो नियम का पालन नहीं कर पाता। कुछ कुछ ऐसा होता है, कुछ कुछ जीव कैसे होते हैं, वो केवल दिखावे के लिए ही भक्ति करते हैं, जिन्हें कहते हैं इम्पोस्टर्स, यानी कि वो भक्त तो होते नहीं है परंतु केवल नाम बड़े हमारा, या हमें सब लोग प्रणाम करें और हमारा आदर करें, इसके लिए भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो इस सिद्धि के लिए हमें भक्ति, इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, केवल दिखावे के लिए यदि हम भक्त का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम ऐसे होते नहीं है तो कभी भी इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, हमें भक्ति में सीरियस होना ही पड़ेगा। तो अर्जुन भी यही पूछ रहे हैं कि मैं इम्पोस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो श्रद्धा के साथ अयतंति, अयति का मतलब, अयति का मतलब क्या है? यहाँ पर अर्जुन ने पूछा है अयति श्रद्धयोपेता, अयति का मतलब ये है कि ये नहीं है कि नियम को फॉलो करता ही नहीं है, वो करने का भरपूर प्रयास करता है परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि आगे जाकर क्या होता है, योगा चलति मानस, योग से उसका मन जो है विचलित हो जाता है। तो ऐसे लोग का काम गति कृष्ण, उसका क्या गति क्या होगी। वास्तव में भक्तों, आजकल लोग भक्ति के विषय में सीरियस नहीं होते हैं। कुछ लोग तो ऐसा है कि भक्ति का अभ्यास तो फिर भी करते हैं, परंतु भक्ति के अभ्यास के साथ साथ वैराग्य जो अत्यंत ही आवश्यक है, जैसे भगवान ने कहा अभ्यास न तो कौनते वैराग्य चगिर्यते, वैराग्य भी बहुत आवश्यक है लेकिन वैराग्य को नहीं अपनाते। यदि कोई भक्ति के मार्ग का अभ्यास स्टार्ट करता है फिर भी भौतिक वस्तुओं में अगर उसका आकर्षण समाप्त नहीं होता है, यदि वो सदैव फिल्म फेयर अवार्ड्स को, टीवी सीरीज को इम्पोर्टेंस देता है, अपने भौतिक फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में इंजॉय करता है और साथ साथ सोचता है कि मुझे मैं माला कर रहा हूँ और स्पिरिचुअल में मुझे सक्सेस भी मिलेगी, भौतिकता में सक्सेस चाहिए स्पिरिचुअल में भी सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस के लिए यह आवश्यक है कि हमें सेक्रीफाई करना पड़ेगा। और सेक्रीफाई कैसे करना पड़ेगा, भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने बहुत सारे भजनों में बताया है कि किस तरह से वैराग्य होना चाहिए। वे कहते हैं, मानस देहो के हो जो कि छुमोरा, अर्पिलो तो तव पद नंद किशोरा। ये मेरा मनुष्य देह, मैंने जो कुछ अर्जित किया है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो सब मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। तो कोई भौतिकवादी व्यक्ति वो बोलेगा, मैं ये सब कुछ कृष्ण को कैसे अर्पण कर सकता हूँ, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा धन, हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो ना केवल घर और धन बल्कि अपनी डिग्रीज वो भी है ना भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं, यानी वो केवल और केवल भक्ति में आ जाते हैं। और बहुत सारे हम ऐसे भक्तों को देखते हैं जो डबल PhD, यहाँ पर हमने देखा था, हम गए थे वहाँ पर मायापुर में, और उनके भक्तों की इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज होती थी और वो बताते थे क्या वो मंदिर में पोछा लगा रहे थे या फिर है ना मंदिर की सफाई कर रहे थे और अलग अलग कार्य, किचन में भगवान के लिए प्रसाद बना रहे थे। तो इतना ज़्यादा भगवान के लिए सेक्रीफाई करना, यानी भौतिक वस्तुओं का आकर्षण समाप्त करके संपूर्ण आकर्षण भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना है। तो ये बहुत ही सीरियस बात है कि हमें अभ्यास के साथ साथ वैराग्य भी अपनाना है। अभ्यास जो गुरु ने आदेश दिया है उन आदेशों को फॉलो करना, और जो भगवान ने विधि विधान गुरु महाराज ने दिए हैं वो क्या है, वैराग्य है। वास्तव में भक्तों, गुरु एक डॉक्टर की तरह है, जैसे डॉक्टर हमारे भौतिक शरीर का इलाज करता है उसी प्रकार मन का इलाज जो है वो गुरु महाराज करते हैं। पहले तो गुरु महाराज दवाई देते हैं, साथ ही कुछ जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं और साथ ही कुछ बातों से मना करते हैं, उसी तरह से गुरु महाराज हमें हरि नाम की दवाई देते हैं और साथ ही कुछ नियम को फॉलो करने के लिए भी देते हैं। तो जैसे बताते हैं कि भाई आपको ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य करना, रोगी अगर दोनों काम नहीं करेगा, यानी दवाई लेगा लेकिन नियम को फॉलो नहीं करेगा, या खाली नियम को फॉलो करेगा और दवाई नहीं लेगा, तो फिर उसका रोग ठीक नहीं होगा। अर्थात अभ्यास और वैराग्य दोनों ही आवश्यक हैं। इसके बाद कृष्ण ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्निंग दी है कि देखो अर्जुन, तुम जानते हो मैंने अभ्यास और वैराग्य को फॉलो करने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि जब तक अभ्यास और वैराग्य नहीं करेंगे तब तक असौ यथात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मत, आत्म साक्षात्कार बहुत कठिन है, ये मेरा मत। तो अर्जुन कहते हैं ठीक है, अगर कोई अभ्यास और वैराग्य को फॉलो कर रहा है, तुमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं उनके हिसाब से चल रहा है गुरु महाराज के आदेशों के अनुसार, लेकिन फिर भी अयति ही श्रद्धयोपेता योगा चलति मानस, लेकिन फिर भी उसका मन विचलित हो जाता है। अप्राप्य योग संसिद्धिम, वो योग की सिद्धि को तो प्राप्त करेगा ही नहीं, और कर्म कांड की सिद्धि को भी प्राप्त होने से रह गया, क्योंकि उसने कर्म कांड को तो पहले ही छोड़ दिया। काम गतिम कृष्ण गच्छति, यहाँ पर कृष्ण शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृष्ण तुम सबको आकर्षित करते हो, परंतु ये माया जो है वो बहुत छलिया है, मतलब हमारे साथ ऐसे छलावे करती है कि हम चाहते हैं आपकी ओर आना, लेकिन फिर भी माया हमको अपनी ओर खींच लेती है। तो जो प्रेम से या पूरी श्रद्धा के साथ आपके पास आने का प्रयास करते हैं, मगर माया उसका पतन करा देती है। श्री प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य के अंत में बहुत ही सुंदर लिखा है कि यह जो दिव्य मार्ग है उसका अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना है। माया सदैव प्रयास करती है कि मैं तो मेरी शरण में आओ, परंतु हम माया के इस पाश को छोड़कर भगवान की शरण में जाते हैं। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। ये माया के साथ भक्ति जो है वो माया के साथ एक खुली चुनौती का युद्ध है कि हाँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारी दासत्व स्वीकार नहीं है, मैं भगवान का दासत्व स्वीकार कर रहा हूँ अब। तो फिर माया से ये बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो क्या करती है, अलग अलग प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, बद्ध जीव पहले ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहे। ऐसा नहीं है कि यदि आप भक्त बन जाओगे, माला करना शुरू कर दोगे, प्रभात साधना करना शुरू करोगे और माया छोड़ देगी, बोले बेचारा वैसे भक्ति कर रहा है तो इसको आकर्षित नहीं करती हूँ, इसको इसके ऊपर आक्रमण नहीं करती हूँ, वो और भी डबल आक्रमण करेगी। लेकिन यदि हमारी दृढ़ निश्चय है, हमारी श्रद्धा है, तो फिर हम उस माया के आकर्षण से छूट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि माया के आकर्षण से हारना सब जरूरी है। हमारे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने सबने, जैसे हरिदास ठाकुर हो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शीला प्रभुपाद, सबने माया के आकर्षण को कभी भी उसके सामने घुटने नहीं टेके, हमेशा उसको हराया है। तो हमें हर सूरत में माया को हराना है। परंतु यदि ऐसा नहीं कर पाए, भक्ति भी की लेकिन माया के आकर्षण से पराजित हो गए, तो क्या होगा? तो ये अर्जुन का प्रश्न है और श्री प्रभुपाद जी ने, अब भगवान तो रिप्लाई बाद में करेंगे, परंतु श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर अपने इस तात्पर्य में उत्तर भी दिया है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? शास्त्र से प्राप्त हो रहा है। और शास्त्र में क्या श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए अष्टांग योग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होना चाहिए। यही ज्ञान है कि हमें या तो भक्ति योग के द्वारा या ध्यान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। और इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान के साथ अपना संबंध तथा उन कार्यों का अनुभूति प्राप्त करनी है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सकता है। यानी संबंध ज्ञान, अभिदेह और प्रयोजन, कि मुझे मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है और मुझे उस संबंध को किस तरह से पुनः जोड़ना है, कौन सा क्या करना है और प्रयोजन क्या है उस संबंध को जोड़ने का, तो यह सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। चाहे आप भक्ति योग में हो, कर्म योग में हो या ज्ञान योग में हो, ये जितने भी योग हैं वो आध्यात्मिक विधि हैं। अब उनमें से किसी पर भी आप चलते हो, देखो अर्जुन का प्रश्न ये है कि आयति श्रद्धयो वेदो योगा चलति। अब वो किसी भी रास्ते पर यदि वो श्रद्धा से चल रहा है लेकिन बाद में उसको सही तरह से नहीं कर पाता है, च्युत हो जाता है, तो फिर उसका क्या होगा? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोले दूसरे अध्याय में इस भगवान ने इस बात पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़ी से भी प्रयास से मोक्ष की मात्र आशा है। भगवान ने कहा था 2.40 में, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इस मार्ग पर की गई थोड़ी सी भी प्रगति मनुष्य को महाभय से बचा लेती है, और इस मार्ग पर चलने वाले जो जो थोड़ा सा भी अगर करते हैं, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इसके अंदर ना तो कोई हानि होगी और ना ही किसी का नुकसान होगा। तो इन तीनों में से इस युग में श्रील प्रभुपाद जी अपना निर्णय दे रहे हैं कि चाहे कर्म योग हो या ज्ञान योग हो, लेकिन भक्ति योग जो है वो बहुत विशेष है। विशेष रूप क्यों है? क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम विधि है। बाकी जितने मार्ग हैं वो क्या है? सीढ़ियों से चढ़ के भगवान के पास जाने के हैं, परंतु यह भक्ति योग क्या है, वो उसमें शीघ्र अति शीघ्र भगवान उन्नति होता है। सद्यो रिद्ध्य वरुद्ध्यते तकृति भी, एक मतलब उसमें समय नहीं लगता है, क्योंकि वह भक्ति जो है वो इतनी सरलता से प्राप्त नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि भक्ति आज करता है बंदा खाली आज से शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जो भक्ति मार्ग है वो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। अभी इस जन्म में हमें जल्दी से मिल गया तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सरल है, परंतु कोई 100 जन्म तक यदि विग्रह सेवा करता है तब कहीं जाकर उसके अंदर शुद्ध नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। भगवान की विग्रह के प्रति कोई अगर कितने जन्मों तक यदि कोई ये कर्म योग अथवा ज्ञान योग करता रहता है, तब भगवान के विग्रह को प्रेम करने का उसे हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होता है। तो ये भक्ति, भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये कोई आसानी से नहीं मिला। भगवान तो यहाँ तक कह दिया कि मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित् यदि सिद्धये, हजारों मनुष्य सिद्धि के लिए कोशिश करते हैं, और यदतामपि सिद्धमं कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। ऐसा थोड़े है कि आज से किसी ने भक्ति स्टार्ट की और भगवान को बस प्राप्त कर लिया। भक्ति प्राप्त करना कठिन है, परंतु भक्ति प्राप्त हो जाए तो फिर उसके द्वारा भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि तीनों में से इस युग में भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। ये बहुत इजी है। अतः पुनः अर्जुन आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से वो अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने का कहते हैं। यानी कि पहले आपने कहा था ना कि भक्ति योग बहुत ना उसके द्वारा आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, तो आप वापस से वही बताओ। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक स्वीकार क्यों न करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भले ही निष्ठा हो जाए, श्रद्धा हो जाए, लेकिन ये जो है वो भगवान वो वास्तव में इस युग के लिए बहुत कठिन है, ज्ञान योग अथवा ध्यान योग। परंतु भक्ति योग स्वाभाविक है, इसलिए निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है ना। ध्यान योग और ध्यान योग में और ज्ञान योग में असफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं होता है ना। और भक्ति योग की श्रृंखला स्टार्ट होती है प्रेम से, और जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान योग में और ध्यान योग में हम अपने साधन के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन भक्ति योग में अपने प्रेम के ऊपर विश्वास। भक्त बहुत इनोसेंट होते हैं, उनके पास कोई इतना ज्यादा ज्ञान नहीं होता, इतना ज्यादा मानसिक शक्ति नहीं होती, लेकिन इतना ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान से कि वो भगवान को प्राप्त कर, एक छोटा बच्चा होता है जैसे, वो हर समय अपनी माता का सानिध्य चाहता है, हर समय चाहता है कि माता मेरे साथ रहे। लेकिन जो बड़ा बच्चा होता है वो क्या सोचता है कि मैं माता पिता के बगैर भी स्वतंत्रता से कार्य करूँ। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि उससे असफल होने का पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क ना रह पाए। अब एक तो बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित होता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते वक्त उसके पुनः मोहित होने का की संभावना बनी रहती है। पहले से मोहित है और फिर अभ्यास करने का प्रयास भी करता है, फिर भी उसकी संभावना। कृष्ण प्रभुपाद जी बोलते हैं, योगो चलति मानसा, यही इसका अर्थ है कि दिव्य पथ से विचलन कैसे, अभी दिव्य पथ से भी वो विचलन हो जाता है, यानी अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में प्रश्न कर रहा है कि उस वो तो पहले से विचलित है, फिर तो उस विचलन से बचने के लिए तो वो दिव्य पद को स्वीकार कर रहा है कि अभी मैं अभ्यास करूंगा और वैराग्य को करूंगा, लेकिन उस पथ पर चलने के बाद भी यदि वो विचलित हो जाता है तो फिर उसका क्या होगा। यहाँ तक अर्जुन का एक प्रश्न हुआ। अभी दो दो श्लोक्स में अर्जुन दूसरे भी प्रश्न इसी प्रकार के करेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।